ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेन्दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिदिदृशतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। शृण्वतां स्वकथा कृष्णा पुण्यश्रवणकीर्तना हृदयन्तस्थभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। हम लोग आज श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के नवे अध्याय के चर्चा करेंगे। देखते हैं कितने श्लोक हम पूर्ण कर पाते हैं। इसमें दामोदर लीला का वर्णन है जिसका फोटो आप देख रहे हैं और हमने इसमें और भी फोटो में जोड़ी हैं जो श्लोक के संबंध में। घबराइए मत, अभी आपको देखा, आगे मत बढ़िए, अभी दिखाएंगे। ठीक है, पहले श्लोक को आप मेरे पीछे बोलिए। श्रीशुक उवाच एकता गृहदासीषु यशोदानन्द गेहिनी कर्मान्तरनियुक्तासु निर्ममन्था स्वयं दधि यानि यानि हगीतानि तद्बालचरितानि च दधि निर्मन्थने काले स्मरन्ति तान्यगायत। बोल रहे हैं एकदा गृहदासिषु यशोदा नंद गेहिनी। एकदा मतलब एक दिन। अब एक दिन का अर्थ है हर दिन इस प्रकार से नहीं होता था, लेकिन एक दिन गृहदासिषु जितनी भी गृह की दासियां थी, घर की दासियां थी, वह उनको घर कार्य में लगा करके, घर की साफ सफाई में लगा करके यशोदा नंद गेहिनी, नंद की गृहिणी माता यशोदा कर्मांतर नियुक्ता से सबको कर्म में लगा करके निर्ममंथा स्वयं दधि, स्वयं दही को मथ रही थी। उसका कारण है, उसके वर्णन किया जाएगा कि अन्य दुदासियों को दही मथने से हटा करके स्वयं दही क्यों मथ रही थी, यह प्रश्न है। तो उस प्रश्न का उत्तर टीका में किया जाएगा। और जब वह दही मथ रही थी तब क्या कर रही थी, तब वह पिक्चर देख रही थी क्या, आजकल होता है कुकिंग कर रही हैं, खाना, स्पेशली माताएं हैं और घर में जो रहने वाले लोग हैं वो टीवी चला करके खाना खाती हैं। लेकिन कह रहे हैं यहाँ पे देखिए, यानी यानी हकीतानी तद बाल चरितानी चा, भगवान के जितने भी, भगवान के क्या कहिए, कृष्ण के, उनको भगवान नहीं मान रही, कृष्ण के जितने बाल चरित्र थे जैसे कि पूतना वध और अभी तक इसको मार दिया था त्रिणावर्त वध, ऐसे करके तो जितने भी अन्य चरित्र थे उनको उन्होंने गीतबद्ध कर दिया था। और दधि निर्मंथने काले, दही को मथने के समय में उनको गा रही थी और इस प्रकार से उनका स्मरण कर रही थी। तो यह हो गया शब्दार्थ। टीका में वो कहते हैं कि इस अध्याय में वर्णन हुआ है कि किस प्रकार से कृष्ण ने यशोदा को दही मथने से रोका ताकि वह उनके स्तनपान कर सकें, और फिर उनको यशोदा मैया कृष्ण को रखकर कहीं और चली गई। ये मुख्य मुख्य वर्णन है। पहले श्लोक की बेटिका वो कहते हैं कि कृष्ण बड़े क्रोधित हुए क्योंकि वह दूध नहीं पी पाए थे माता यशोदा का, और इस कारण से वह, इसमें तो नहीं दिख रहा है फोटो, आगे की फोटो में दिखाएंगे, जो मटका था उसको फोड़ दिए थे और उसके बाद माता यशोदा के द्वारा बांध दिए गए थे। लीला समाप्त। लेकिन ये लीला जो है इतनी सिंपल नहीं है, ये बहुत गुह्य लीला है। अब आप देखिए इसके आगे, अगर आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो उसमें आप देखेंगे, वो कहते हैं कि आप उन लोगों को जो लोग चोरी करते हैं, क्रोध करते हैं और अन्य निम्न गुणों से युक्त हैं, उनको आप बांध देते हैं कर्म बंधन में और उनको रुलाते हैं। लेकिन इस समय आप स्वयं चोरी में फंसे हैं, आप पर चोरी का इल्जाम लगाया जा रहा है। इल्जाम क्या लगाया जा रहा है, चोरी तो किए ही हैं, मक्खन की चोरी किए हैं। आप क्रोध के पूरी तरह अभिभूत हो गए, होठ ऐसे होठ चबाएंगे, भगवान अच्छा मुझे छोड़ दिया यहां से करके, और मैं गुस्सा हो करेंगे और उसके बाद आपको बांध दिया जाएगा। देख रहे हैं कितनी सुंदर टीका है, ओवरऑल पूरे चैप्टर के लिए ही है टीका है। टीका समझ में आ रही है, भगवान कृष्ण कर्म के बंधन के माध्यम से जो लोग चोरी करते हैं, गुस्सा करते हैं और अन्य निम्न गुणों से युक्त हैं, निम्न मतलब लोअर क्वालिटीज, उनको वो कर्म बंधन में बांध देते हैं। लेकिन इस लीला में उन पर चोरी का आरोप हो रहा है, मतलब खुद चोरी कर रहे हैं, वो क्रोध अभिभूत हो जाते हैं। लेकिन ये ध्यान देना चाहिए कि यह क्रोध भी भगवान की चित्त शक्ति का ही प्राकट्य है, यह तमोगुण का प्राकट्य नहीं है। लेकिन लीला में ऐसा दिख रहा है और माता यशोदा के द्वारा बांधे जा रहे हैं। इसको इसकी इसके रस को समझ पा रहे हैं आप? अब नहीं समझ पा रहे तो क्या करेंगे, हरे कृष्णा करते रहिए, समझ में आएगा। वो भगवान जो पूरे जगत को बांधते हैं, उन लोगों को जो निम्न गुणों से युक्त हैं, वह भगवान, वही भगवान गुस्सा कर रहे हैं, वही भगवान चोरी कर रहे हैं और वही भगवान माता यशोदा के द्वारा बांधे जाते हैं। ये लीला की विशेषता है। अब देखिए समझ में नहीं आ रहा है तो क्या कहा जा सकता है, सुनिएगा, सुनने से भी सब अच्छा फायदा होता है। श्रवण मात्र पाप निवर्तकम। टीका में आया है कि भगवान की लीला को श्रवण करने मात्र से हमारे पाप का नाश हो जाता है, यानी कि समझ में ना आए तो भी, और यह भी अनुभूत करेंगे कि आज समझ में नहीं आ रहा है और जब करते रहेंगे तो आगे जाके समझ में आने लग जाएगा। कुछ बातें समझ में आएंगी, कुछ बातें नहीं समझ में आएंगी। अब इससे पहले परीक्षित महाराज ने एक प्रश्न किया था सुखदेव गोस्वामी को कि नंद और माता यशोदा ने ऐसी क्या साधना करी थी जो कृष्ण उनको बेटे के रूप में मिले। यह प्रश्न क्यों है, क्योंकि क्या हम वह साधना करें जिस प्रकार कृष्ण हमें बेटे के रूप में मिले। तो उन्होंने उत्तर दिया था कि दारा और धारा, धारा धरा और द्रोण के रूप में उन्होंने तपस्या की थी और ब्रह्मा जी का वरदान उनको प्राप्त हुआ था, और उन्हें बोला था कि कृष्ण जब गोकुल में आए हैं तो उनके प्रति हमारा वात्सल्य भाव हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा हाँ ठीक है, लेकिन यह उत्तर पूर्ण नहीं था। क्यों पूर्ण नहीं था, क्योंकि किसी भी साधना के द्वारा भगवान के प्रति इस प्रकार का वात्सल्य प्रेम यशोदा और नंद महाराज का नहीं है। माता यशोदा और नंद महाराज का प्रेम नित्य ही है भगवान के प्रति इस प्रकार से, वे भगवान के नित्य पार्षद हैं, किसी साधना के द्वारा वह इस प्रकार के प्रेम को प्राप्त नहीं किए हैं। आज का टॉपिक थोड़ा सा एडवांस्ड है क्योंकि समय इस प्रकार का है, हम दामोदर लीला की चर्चा कर रहे हैं, और उनको रागात्मिक भक्त कहा जाता है, जो हमेशा मतलब अनादि काल से कृष्ण से प्रेम कर रहे हैं माता पिता के रूप में, अभी भी कर रहे हैं और कब तक करेंगे? अनंत काल तक करेंगे। जो भक्त यहां साधना कर रहे हैं वह एक स्तर पे आकर के उस भाव का अनुशीलन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम यंत नंद और यशोदा बन सकते हैं, ऐसा संभव ही नहीं है। जैसे हम लोग भगवान नहीं बन सकते, ऐसे हम लोग नंद और यशोदा भी नहीं बन सकते हैं। उस भाव का अनुसरण किया जा सकता है, ठीक है। यह लीला कब हुई थी? भगवान को बांधने की लीला तो कह रहे हैं यह दीपावली वाले दिन हुई थी, और उसमें विशिष्टता यह है कि नंद महाराज की कितनी गैया थी किसी को पता है? 9 लाख, ठीक है। अब कहेंगे 9 लाख को कहां रखते थे, तो जब आप लीला में चले जाएंगे तब मालूम चल जाएगा। कुछ प्रश्नों का उत्तर आपको लीला में जाके ही मालूम चलेगा, तो लीला में कैसे जाएंगे? 16 माला जप करेंगे कम से कम हर रोज, साल में मिलाकर एक बार नहीं, कभी पहुंचेंगे ऐसा तो नहीं है, अभी तो नहीं पहुंच रहे हैं, अभी तो कोई उम्मीद नहीं लग रही, लेकिन कभी जब पहुंचेंगे तो ठीक है। तो वो नंद महाराज जो कृष्ण के पिताजी हैं, उनकी 9 लाख गायें थी, उन 9 लाख गायों में से कुछ गायें बहुत क्या कहा जाए कि एकदम उत्कृष्ट श्रेणी की थी, जैसे काले कान वाला घोड़ा, देखे हैं कभी आप काले कान वाला घोड़ा? नहीं देखे, क्योंकि बहुत ही कम होता है, घोड़े वैसे ही कम दिखाई पड़ते हैं, लेकिन बड़ा स्पष्ट इस प्रकार से विशिष्ट घोड़े जैसे होते हैं उसी प्रकार से गैया थी। और वह क्या करती थी, गायों की विशेषता ये थी कि वह एक विशिष्ट प्रकार की घास को ही खाती थी, इसे पद्मगंधा गाय कहते हैं, और उनकी जो दूध था उसमें बड़ा स्पेशल गंध आती थी। गंध मतलब सुगंध, गंध मतलब हीक नहीं, जैसे भैंस के दूध में आती। आजकल तो भैंस का दूध और गाय के दूध में अंतर भी समझ में नहीं आता, क्योंकि दिमागी भैंस जैसा हो गया क्या किया जाएगा बताइए आप क्या कहा जाए, मोटा दूध मोटी बुद्धि कि नहीं? तो माता यशोदा के मन में था कि अब यहां पे आपने शब्द देखा था एक दाम, मतलब एक दिन, यानी रोज माता यशोदा दही नहीं मथती थी, और मथने का कारण यह था कि वो सोच रही थी कि उनका लड़का दही चुराने के लिए दूसरे के घर में जाता है, निश्चित रूप से हमारे यहाँ पे जो दही है वो ठीक नहीं होता होगा। उनके मन में आया था कि ये जो सेविकाएं हैं उनको तो दूध उबालना भी नहीं आता है, दूध जला देती हैं, अब जले हुए दूध का दही जमता होगा तो कृष्ण को अच्छा नहीं लगता होगा, इसलिए वह चोरी करने के लिए जाता है। तो अपने वात्सल्य प्रेम के कारण माता यशोदा ने कहा कि आज जितना भी मक्खन निकलेगा जो भी होगा वो मैं स्वयं निकालूंगी, और इस प्रकार से वो इतना मधुर होगा खाने, मधुर का मतलब बहुत अच्छा होगा खाने के लिए, कि कृष्ण और कहीं चोरी करने के लिए नहीं जाएंगे, ठीक है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है यहां पे कि व्रज की जितनी स्त्री थी, जितनी भी स्त्रियां थी, उन्होंने कृष्ण की लीलाओं को गीतबद्ध कर दिया था, गीतबद्ध मतलब उसे कविता के रूप में कर दिया था, और उनको माता यशोदा गाती थी, जब वह घर के कार्य भी कर रही थी तो उसको गाती थी। इसे परिभावित भक्ति कहते हैं। सामान्य दृष्टि से कोई कहेगा कि माता यशोदा भी एक सामान्य स्त्री है जो घर के कार्य कर रही है, लेकिन वो कृष्ण का ही वर्णन करती रहती, वाणी गुणानुकथने, आगे आएगा श्रवणे कथायाम, जब भगवान ने यमलाजरन वृक्ष में उद्धार किया तो उन्हें यही वरदान मांगा कि मेरी वाणी आपके गुणों का वर्णन करने में और मेरे कान आपके गुणों का श्रवण करने में लगा रहे, ऐसे करके बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं। तो जनरली हम सोचते हैं, स्वभावतः हम सोचते हैं कि जब हम बस क्लास में बैठे हैं तब भगवान का श्रवण करना चाहिए, लेकिन जैसे हम कुछ कार्य भी कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं या और भी कोई कार्य कर रहे हैं, और अगर हम उसमें कुछ गा सकें भगवान के बारे में तो भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। बहुत सुंदर है, माता यशोदा दही तो मथ रही हैं, लेकिन उनका चित्त कृष्ण में लगा हुआ है। इसको समझना मुश्किल नहीं है, जैसे हम लोग जप तो कर रहे हैं लेकिन चित कहाँ लगा रहता है ना, हरे कृष्णा आज एग्जाम में कितने नंबर आएंगे, हरे कृष्णा राम पढ़ाई नहीं करी, हरे कृष्णा उसने मुझे ऐसे ऐसे कर दिया छोड़ूंगा ना सर, हरे कृष्णा तो इस प्रकार से हम लोग हरे कृष्णा कर सकते हैं लेकिन चित्त हमारा जो है कहीं और जाता है, और जहां चित्त जा रहा है वही हमारी आसक्ति है, दूसरे को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए कोई हमको निरुत्साह होने की जरूरत नहीं है, भगवान का भक्ति करते रहेंगे तो फिर धीरे धीरे शुद्ध होंगे। हरिहरति पापानि दुष्ट चित्तेर अपि स्मृतः, जिसका दुष्ट चित्त है उसके पापों को भी हरि हर लेते हैं, भगवान हरि हर लेते हैं, इसलिए वो चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक इंग्लिश में कहेंगे इवैल्यूएशन, परीक्षण करना चाहिए कि हमारा चित्त किधर जा रहा है। तो भले ही माता यशोदा जो है वो दही मथ रही हैं लेकिन उनका चित्त जो है कृष्ण में लगा है, अपने बच्चे में लगा है, वो बच्चे के लिए ही कर रही है। ये बात ध्यान रखिएगा, अभी आगे आने वाले कुछ प्रश्न इस पे आधारित हैं कि जो व्यक्ति जो भक्त प्रेम से पूरित होता है वह सब कुछ केवल कृष्ण के लिए ही करता है, वो बहुत कुछ करता है लेकिन सब कुछ केवल कृष्ण के लिए करता है। समझ में आ रहा है, वो बहुत कुछ करता है लेकिन वह सब कुछ कृष्ण के लिए करता है। हम बहुत कुछ करते हैं लेकिन बहुत सारी चीजें कृष्ण के लिए नहीं करते, बहुत प्रयास करके हमें वो करना पड़ता है, खूब शास्त्र सुनते हैं तब तो हम सोचते हैं ये तो कृष्ण के लिए करना चाहिए। एक बद्ध आत्मा में और मुक्त आत्मा में स्वाभाविक रूप से ये अंतर होता ही है, ठीक है। उसके बाद माता यशोदा के स्वरूप का वर्णन हो रहा है, मेरे पीछे बोलिएगा, तीसरे श्लोक को देखिए। श्यामं वासः पृथुकटितटे बिभ्रति सूत्रनद्धम्, पुत्र पुत्र स्नेहास्नतकुच युगम जातकंपम कंपम च सुभ्रुः, रज्ज्वाकर्षश्रम भुज चलत कंकण कुंडले च, स्विन्नम वक्त्रम कबर विगलन मालती निर्ममंथ, ठीक है। तो इसमें माता यशोदा के सुंदर रूप का वर्णन है। अब क्यों वर्णन है उसको हम चर्चा करेंगे, लेकिन कैसा वर्णन है देखिए, उनकी जो साड़ी है वह पीले कलर की है, पीला कहिए या ऑरेंज येलो, सैफ्रन येलो मतलब होगा, जिसमें कुछ कुछ मैं समझता हूँ ये जो भगवान नहीं कहा जाएगा, भगवान ऐसा नहीं कि वो ब्रह्मचारी ड्रेस पहन के कर रही है ये शब्दों का प्रयोग बड़ा करना पड़ेगा, कठिन शब्द है। जैसे ये कलर आप देख सकते हैं, जो कौन सा मैरीगोल्ड जो कलर है, केसरिया कलर की केसर, जो भी है जब लीला में जाना तो समझ में आ जाएगी। अभी धारणा कर लीजिए कि कुछ पीली पीली साड़ी है और उन्हें एक बेल्ट बांध रखी है अपने कमर पे, और उसके बाद वह रस्सी से दही को मथ रही है, बड़ी मेहनत हो रही है, और उनके जो हाथ में जो क्या कहते हैं उसको चूड़ियां, वह भी कीर्तन कर रहे हैं। जैसे आपने देखा हम लोग करताल से कीर्तन करते हैं ना, तो मुख से गा रहे होते हैं और करताल आवाज करती है, तो वह भी बड़े कह सकते हैं क्या कहेंगे उसको, ताल में बज रहे हैं, तो जो गायन हो रहा है माता यशोदा का वो संगत दे रहे हैं, संगत समझते हैं ना, संगत समझते हैं, जैसे यहाँ पे कीर्तन होता है तो मृदंग संगत दे रहा होता है, इस प्रकार संगत दे रहे हैं, और उनका पूरा शरीर इस प्रकार से परिश्रम कर रहा है, उनके स्तनों से कृष्ण का स्मरण करके दूध चू रहा है, और उनके पूरे मुख के ऊपर पसीने की बूंदें आ रही हैं, और मालती के जो फूल हैं वह उनके जो केश में बंधे हुए थे वह गिर रहे हैं। इस पे एक भक्त की टीका है कि मालती के पुष्प सोच रहे, मालती समझ रहे हैं, मैं समझता हूँ इसी तरह के फूल होते हैं जैसे इनकी माला माला में है, सफेद सफेद फूल होते हैं, छोटे छोटे एक्चुअली मधु मालती ऐसे करके फूल होते हैं, बहुत सुंदर सुंदर फूल। हाँ, स्पेशली आप देखेंगे साउथ इंडिया में माता जी लोग सफेद सफेद फूल अपने बालों में लगाते हैं। हाँ, गजरा कहते हैं जो भी कह लीजिए, अब इतना जानकारी हमें तो नहीं होगी स्वाभाविक। हाँ ठीक है, तो मालती तो सब भक्त बोल रहे थे कि हम माता यशोदा के जो भगवान की माँ है उनके सर पे कैसे रह सकते हैं। आप कहेंगे अब फूल कैसे सोच सकता है। आध्यात्मिक जगत में हर व्यक्ति, ये हर चीज एक व्यक्ति है, तो वहां के फूल भी एक व्यक्ति है, तो फूल इस प्रकार से सोच रहे हैं। अभी दूध भी व्यक्ति मिलेंगे आपको, दूध अभी मालती माता जी से मिल रहे हैं, अभी दूध प्रभु से मिलेंगे, तो सब लोगों से मिलने वाले हैं। ये आध्यात्मिक जगत की विशेषता है कि हर चीज भी वहां पे एक व्यक्ति है, तो वह गिर रहे थे। यहाँ पे एक वर्णन नपिटिका में कह रहे हैं बहुत सुंदर कि किस प्रकार से माता यशोदा बहुत अच्छे कपड़े पहनकर वात्सल्य की मूर्तिमान रूप होकर के कृष्ण की सेवा में लगी हुई है। देखिए जब भगवान के लिए कुकिंग कर रहे हैं, इससे सीखना चाहिए कि ऐसा नहीं कि जो एकदम गंदा कपड़ा था सोए हुए भैया वहां किचन में तो कुछ लगी जाएगा, कीचड़ लग जाएगा, तो उसको पहनकर कपड़े पहन करके हम कुकिंग करें, या फिर पैंट शर्ट पहन करके हम खिचड़ी बनाए। ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, सबसे अच्छा है कि व्यक्ति धोती कुर्ता पहन करके करे, करके देखिएगा आपका भाव एकदम चेंज हो जाएगा, एकदम चेंज हो जाएगा। अब आ ही जाता है तो फिर शिक्षा निकल ही जाती है मुझसे। बड़े उल्लास के संग और बहुत ही सुंदर कपड़े पहन करके भगवान की सेवा होती है, है ना। ऐसा नहीं कि हाफ पैंट में ना, शुरुआत में तो कैसे भी करो तिलक लगा करके, भजन का एक रीति होती है, सीख लेना चाहिए उसको। और किस वात्सल्य भाव से वह सेवा कर रही हैं, वह बहुत उच्चतर जो भक्त होते हैं वह इस पर ध्यान करते हैं। यही रागानुगत साधना साधना कहलाती। अभी हम इसके योग्य नहीं हैं, लेकिन यही रागानुगत साधना है। किस प्रकार से माता यशोदा कृष्ण से प्रेम कर रही हैं, किस प्रकार से उनका वात्सल्य भाव है। भक्त लोग जब अनर्थ निवृत्ति पार कर लेते हैं तब इस प्रकार की साधना कर सकते हैं। ये चीज वहां पे इसलिए बताई जा रही है। इस पे हम ज्यादा नहीं चर्चा करेंगे, लेकिन एक टीका बड़ी सुंदर है। उन्होंने कहा कि माता यशोदा के चेहरे का वर्णन करके और उनके शरीर का वर्णन करके उनकी सुंदरता का वर्णन किया जा रहा है, और बहुत सुंदर बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि जो मालती के पुष्प हैं वह ऐसे गिर रहे हैं जैसे काले बादलों से जल गिरता है। तो काले बादल से क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि माता यशोदा के जो बाल हैं बहुत काले, माता यशोदा के बाल बहुत काले हैं, तो उससे मालती के जो फूल हैं वो ऐसे गिर रहे हैं जैसे काले बादल से बारिश गिरती है। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर व्याख्या। ओके, एक चीज और अभी ये बता रहे हैं कि माता यशोदा ने पीली साड़ी पहनी थी, यह क्रम दीपिका के अनुसार है। देखिए जो भी सारा वर्णन है वह शास्त्र के अनुसार है। सनातन गोस्वामी जी कहते हैं गौतमी तंत्र के अनुसार दो यहाँ पे मतभेद हैं कि माता यशोदा जो है वह श्यामल वर्ण की थी क्रम दीपिका के अनुसार, और गौतमी तंत्र के अनुसार वह गोरी थी। तो अब आप जब लीला में जाएंगे तो मालूम चलेगा, ठीक है। क्या कहा जाएगा, अब आप फोटो देख सकते हैं। हम बहुत तेज तो नहीं जा रहे हैं, समझ में आ रहा है माता यशोदा भी क्या कर रही हैं, कौन सा सीरियल देख रही है भगवान, लिटिल कृष्णा। शी इज सीइंग लिटिल कृष्णा। अब आप एक फोटो देखिए, कितना प्यारा फोटो है, कौन इस लीला में प्रवेश नहीं करना चाहेगा बताइए, कितना सुंदर है। कोई सोच सकता है कि भगवान ऐसे हो सकते हैं। देखिए भले ही हम कृष्ण की लीला का वर्णन सुन रहे हैं, लेकिन ये जरूर याद रखना चाहिए कि हमारे लिए तो वो भगवान ही है। बहुत सुंदर फोटो है, अगर आप इस पे खाली पहले इसको थोड़ा देखिए और थोड़ा सा मनन कीजिए इस फोटो को, देखिए कितने सुंदर हैं। कृष्ण आए, अभी तो हम इसका श्लोक पढ़ने वाले हैं, कृष्ण आए और देखिए माता यशोदा किस प्रकार से कृष्ण को ऐसे पीछे करके देख रही हैं। आपने देखा है बहुत बार बच्चे आकर के माता को पीछे से पकड़ लेते हैं और माता मुस्कुराती हैं और हल्का सा पीछे से अपने बच्चे को तिरछी नजर से देखती, तो वो क्यों आए, क्यों पकड़े, एक्चुअली वो कहे कि अभी आप दही मत मत हो, आप मुझे स्तनपान कराइए। ये पिक्चर का एक भाग है, वस्तुतः वह कृष्ण अभी आएंगे और आकर के वो मंथनी को पकड़ लेते, तो माता यशोदा बड़ी प्रसन्न होती है कि मेरा लड़का कितना बुद्धिमान है, वो समझ गया है कि अगर मंथनी पकड़ लूंगा तो माता दही नहीं मथेगी और मेरे को गोद में लेकर के मेरे को स्तनपान करेंगे। तो मेरा लड़का कितना बुद्धिमान है, केवल रो नहीं रहा है, वो बुद्धिमानी से सोच रहा है कि किस प्रकार से माता के स्तन का दूध हमको प्राप्त हो सकता है। मैंने जानबूझ के फोटो में रखी है ताकि आप उन पे थोड़ा ध्यान कर सके। आप माता यशोदा के चेहरे पे वात्सल्य भाव को देख पा रहे हैं, कितना सुंदर फोटो उन्होंने बनाया है। और कृष्ण कितने प्रेम से माता यशोदा के पास आए हैं। अगर आप लोगों के पास स्मार्टफोन है और आप लोगों को शेयर किया गया तो आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके नीचे एक श्लोक है, उसको बोलिए। ताम स्तन्य काम आसाद्य मथनतीम जननीम हरि ग्रहित्वा दधिमन्थानम् न्यषेधत् प्रीतमावहन्। बहुत सुंदर। देखिए इसमें कहा है ताम स्तन्य काम आसाद्य। स्तन्य काम बड़ी अद्भुत बात है। भगवान कृष्ण जो आप्त काम है, जिनकी सारी इच्छाएं उनकी इच्छा से ही पूर्ण हो जाती हैं। उन्होंने इच्छा किया कि साक्षता बहुत श्यामा, उन्हें सोचा कि मैं बहुत हो जाऊं और जगत की सृष्टि कर ली। उन्हें किसी की जरूरत नहीं थी, या कहा जाए कि जगत की सृष्टि करने के लिए उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं थी। कोई चंदा मांगने गए थे भगवान कि ईंट लाइए, पत्थर लाइए, हम सृष्टि करना चाहते हैं, आइए? कोई नहीं, हम तो सब सो रहे थे। भगवान ने इच्छा मात्र से पूरा जगत की सृष्टि कर दी, किसी भी वस्तु की उनको इच्छा नहीं है, फिर भी स्तन्य काम। एक एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। वह माता यशोदा के प्रेम के भूखे हैं। इसमें भगवान की बहुत सी विरोधास्पद गुणों का वर्णन हो जाता है। एक तरफ भगवान आप्त काम, इन्हें किसी कुछ नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ क्या शब्द है? स्तन्य काम। माता यशोदा के स्तन के जो दूध है उसके प्रति वह उनकी इच्छा हो जाती है। तो माता यशोदा के दूध से आकृष्ट हैं या उनके प्रेम से आकृष्ट हैं? प्रेम से आकृष्ट है। और वह प्रेम ही उनके स्तन में दूध के रूप में प्रकट होता है। इसीलिए गाय के दूध को भी बड़ा स्पष्ट महान कहा जाता है, क्योंकि गाय का दूध भी जो अपने बछड़े को देखती है तो उसको प्रेम होता है, और फिर वह प्रेम ही दूध के रूप में परिलक्षित या बाहर आता है। तो इस प्रकार का दूध पीने से व्यक्ति को उसका हृदय भी पिघलता है। ठीक है, वो एक आगे की बात है। मथनतीम जननीम हरि, जो उनकी माँ दही को मथ रही थी, उनको क्या किया? ग्रहित्वा दधि मंथानम, जो दही मथने का आजकल के जमाने में कहा जाएगा तो जो मिक्सर ब्लेंडर चला रही थी मम्मी, उसका स्विच बंद कर दिया। लेकिन मिक्सर ब्लेंडर नहीं था उस जमाने में, बिजली नहीं थी। आप देख सकते हैं माता यशोदा अपने हाथों से मथ रही थी। आजकल अपने माता जी लोग प्राय हाथों से कम काम करते हैं, वाणी से अधिक काम करते हैं। ए फल लाया कि नहीं लाया? नौकर को नहीं, पति को सिर रस करते, चलो पिक्चर दिखाने ले चलो। लेकिन पहले माता लोग बहुत सारे काम घर के करते थे, और इसमें एक काम था दही मथना। काफी मेहनत वाला काम है। आजकल अगर दही भी मथना हो तो मशीन लगा देने करके मक्खन निकल आया। बट एक अलग मैंने देखा है, ब्रज में भी एक भक्त हैं, उनके पास था, बहुत कम आजकल रह गया, मथते हैं, वो कुछ मथते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो उन्हें क्या किया? ग्रहित्वा दधि मंथानम, वो जो डंडा था उसको पकड़ लिया। निषेधत, निषेध समझते, निषेध ये नहीं करना है, तो मतलब पकड़ लिया, अब इसको नहीं करना है, दही मत मत हो। और प्रीतिमावहन, अपनी माँ में प्रीति को जागृत बड़ी दिन बढ़ाने के लिए कि अभी मैं आपका स्तन का दूध पीना चाहता हूं, यह किया। तो टीका में बड़ा सुंदर वो कह रहे हैं कि कृष्ण भूख से रोने लगे। कुछ कठिनाई महसूस हो रही है इसमें आपको स्वीकार करने में? जो भगवान गीता में बोलते हैं कि अहम बीज प्रदा पिता, सभी जीवों का पिता मैं हूं, सबको मैं खिला रहा, भूत भृत ममा ममे, क्या श्लोक है वो? नहीं नहीं, जीवों का तो है एक भूत भृत करके श्लोक भी आता है कि सभी जीवों का पालक मैं हूं, सब कुछ मुझसे आता है, हाँ हम सर्वस्व प्रभु, वो इतने मतलब अपनी शक्ति ऐश्वर्य को प्रदर्शित कर रहे हैं, वह भूख से बेचारे बड़े परेशान हैं। तो यह वृंदावन की मधुर लीला है और ये अपने भगवान की दिव्य चिद शक्ति के तरह संपन्न होता है। तो भगवान उठे सुबह और वह भूख से रोने लगे और अपना रूम अपना घर कमरा छोड़ करके माता यशोदा के पास आए और यहाँ इस दधि मंथन की जो डंडे है उसको रोक दिया। तो माता यशोदा का प्रसन्नता वो बहुत बढ़ गई। देखिए ब्रज में कृष्ण की छोटी से छोटा एक इंग्लिश में कहेंगे जेस्चर, जेस्चर क्या बोलेंगे हिंदी में, ठीक है मतलब कुछ छोटा सा क्रिया या कर्म भी वहां के ब्रजवासियों को असीमित आनंद देता है। छोटी से छोटी बात, यहाँ के फिल्म एक्टरों की छोटी छोटी तथाकथित अदाएं लोगों को कितना आकर्षित, या क्या डायलॉग बोला है, क्या उधर से उसने देखा, क्या उसने ऐसे बोला, क्या झटके दिए अपने बालों के, इस पर कितना वर्णन होता है जगत में, है कि नहीं, बेवकूफी की बातें हैं। लेकिन कृष्ण की एक छोटी सी छोटी, छोटा तो नहीं कहना चाहिए, हर एक विशिष्ट गुण पे कितना आनंद मिलता है भक्तों को हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। तब कहेंगे एक बच्चे ने आकर के अगर दधि मंथन की लकड़ी को पकड़ लिया तो कौन सी बड़ी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। माता यशोदा को क्योंकि उनके हृदय में भगवान के प्रति असीमित प्रेम है, तो छोटी सी भगवान की लीला ये दिखा रही है कि उनका उनका बेटा बहुत चतुर है। तो बड़ी खुश हो जाती हैं कि मेरा बेटा कितना चतुर है, वो समझ रहा है कि किस प्रकार से माता को रोकना चाहिए। तो उनको बहुत सुख प्राप्त हुआ। फिर माता यशोदा ने क्या किया, तमंकमारूढ़ अपाययस्तनम्, खाए नहीं हम लोग कुछ, लंच नहीं लिए हैं। तमंकमारूढ़ अपाययस्तनम्, भाई समोसे पहले बांट दो, यहाँ पे एक समोसा खाएंगे तब आवाज निकलेगी, ये कुछ पानी पिलाया जाए। तमंकमारूढ़मापाययत्स्तनम् स्नेहास्नुतं सस्मितमीक्षति मुखम् अतृप्तमुत्सृज्य जवेन सायया उत्सच्य माने पयसी त्वधिष्ठते। तमंक मारूढ़ अपायत स्तनम्, अपने अंक में अपने गोदी में कृष्ण को माता यशोदा ने बिठाया या लिटाया। अपाय स्तनम्, अपने स्तनों से वह दूध पिलाने लगी। कैसे स्तन थे, स्नेह स्नुतम, उनके स्तनों से स्वाभाविक रूप से दूध निस्सृत हो रहा था। सस्मितम इक्षति मुखम, और वह अपने बेटे अपने कृष्ण के मुख को देख करके मुस्कुरा रही थी। लेकिन उन्होंने देखा कि जो दूध है वह उबल रहा था। मैंने आपको पहले बताया था ना कि बहुत कुछ करते हैं लेकिन वह सब कुछ कृष्ण के लिए होता है। तो अभी माता यशोदा ने कृष्ण को कहां बिठाया, अपनी गोद में, और उनको दूध पिला रही हैं। लेकिन इतनी देर में वो देख रही हैं कि वह दूध जो कृष्ण के लिए उबल रहा है वह उफन रहा है। तो वह उसको बचाने के लिए कृष्ण को नीचे रख करके, नीचे या कहीं स्थान पर रख करके उस दूध को बचाने के लिए चली गई। यद्यपि यहां पे शब्द है अतृप्तम, कृष्ण तृप्त नहीं हुए थे। इसको संबंध में बहुत सुंदर एक टीका सुनते हैं हम लोग भक्तों से कि दूध क्या सोच रहा था। आप कहेंगे प्रभु जी दूध कैसे सोच सकता है, लेकिन भगवान की लीला में हर एक कोई व्यक्ति एक व्यक्ति है। तो दूध सोच रहा था कि भाई मैं यहां पे कृष्ण की सेवा के लिए तप रहा हूं, अग्नि में उबल रहा हूं, माता यशोदा का कृष्ण दूध पी रहे हैं, और माता यशोदा का दूध कब समाप्त होगा, कभी नहीं, और कृष्ण कभी तृप्त होंगे, कभी नहीं। तो तो मेरी सेवा कब स्वीकार होगी? कभी नहीं। तो मेरे जीवन का क्या उपदेश है? कुछ नहीं, इसलिए मैं मरना है, सुसाइड कर लूं। तो दूज है सुसाइड करना सहारा था। कहेंगे प्रभु जी हमने साइंस पढ़ी है, फिजिक्स पढ़ी है, केमिस्ट्री पढ़ी है, लेकिन ये कहानी तो हमने कभी नहीं पढ़ी। इसीलिए ये कृष्ण की लीलाएं ये सब बहुत गुह्य है। ये देखिए बातें सारी सत्य हैं, हमारा जो रेंज है वो लिमिटेड है, हमारी जो इंद्रियों की शक्ति समझने की वो बहुत कम है। श्रीमद् भागवतम में जो भी वर्णन है वो सत्य है, हम झूठ में जी रहे हैं, हम झूठ में जी रहे हैं, इसलिए सत्य भी झूठ लगता है। जैसे यहां पे पीली रोशनी है, पीली रोशनी की जगह सफेद, अभी सब कुछ पीला पीला लग रहा है कि नहीं? अभी सफेद रोशनी करेंगे सब कुछ सफेद सफेद लगेगा। तो हम ही लोगों को पीलिया हुआ है, इसलिए हम समझ नहीं पाते हैं कि भगवान की लीलाएं भी कितनी सत्य है। सारी एक एक बात सत्य है, इसकी अनुभूति तब होगी जब हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो कृष्ण संतुष्ट नहीं हुए थे और माता यशोदा ने उनको उनके लिए दूध उबाल रही थी, तो उस दूध को बचाने के लिए वह कृष्ण को थोड़ी देर के लिए रख करके चली गई। वो सोच रही थी कि मेरे स्तन का दूध तो हमेशा मेरे पास है, अब यह दूध तो बड़ी कठिनाई से प्राप्त हुआ है पद्मगंधा गायों से, और यह नष्ट हो जाएगा तो फिर बड़ी कठिनाई में होगी प्राप्त करने में दोबारा से, तो इसलिए उसको बचाने के लिए चली गई। फिर से रिपीट करेंगे, वो बहुत कुछ करते हैं जो प्रेम में होते हैं, लेकिन वह सब कुछ कृष्ण के लिए होता है। इसीलिए जब हम शुद्ध भक्ति का वर्णन करते हैं तो उसमें होता है कि अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा से। अभी कृष्ण प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे यह कोई गारंटी नहीं है, अभी आप देखेंगे कृष्ण बहुत गुस्सा हो जाएंगे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि माता शोदा भक्त नहीं है, क्योंकि वह दूध भी किसके बचाने के लिए कही थी? कृष्ण के लिए। ऐसा वो सोच नहीं रही थी अरे 50 रुपए लीटर का दूध आया है ऐसा तो नहीं है कि नहीं पैकेट से खरीद के लाया, ऐसा तो नहीं हो ना। तो ये सब हम लोग कुछ कल्पना ही नहीं कर सकते वो दूध कितना सुगंधित होगा। बताओ आज तक जिंदगी में कभी आप सुगंधित दूध पी हो? हाँ प्रभु जी फ्लेवर्ड मिल्क पिया है, वो जो आता है, अरे उसमें तो फ्लेवर अलग से डालते थे ना, पद्मगंधा गाय का दूध होता है, केमिकल वाला फ्लेवर होता है, उस तरह से नहीं। तो हमने जो टीका में थी बातें उसकी चर्चा हमने पहले ही कर लिया कि माता यशोदा क्यों खुश हुई थी, क्योंकि उनका लड़का बड़ा बुद्धिमान है। और कोई प्रश्न करेगा अरे भाई भगवान कृष्ण साक्षात गोद में है और उनको नीचे रख करके चली गई कहीं और? एक जगह टीका में और इस प्रकार से आता है कि भगवान कह रहे अरे वैकुंठ छोड़कर मैं आपका लड़का बनाऊ, मेरी कोई वकत ही नहीं है, आप वकत समझते हैं, मेरी कोई वैल्यू नहीं दे रहा है। हमारे एक रिश्तेदार थे वैल्यू नहीं बोलते थे, अरे हमारा कोई वैल्यू ही नहीं दे रहा है तो इस प्रकार से भगवान बड़े क्रोधित हो गए थे। तो खैर माता यशोदा दूध बचाने के लिए गई थी। देखिए प्रभुपाद जी इस टीका में बड़ा सुंदर बोलते हैं, भक्ति में भक्त को यह निश्चय करना होता है कि इस समय वो क्या करे जिससे कृष्ण प्रसन्न होंगे। भक्ति में हर समय जो प्रेम से प्रेरित होते हैं, जिनको हृदय में प्रेम होता है, वे हमेशा कृष्ण के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनके सामने असमंजस ये होता है कि वह इस समय भगवान के लिए क्या करें, जब करें कि और कोई सेवा करें या ठाकुर जी की सेवा करें, क्या और सेवा करें। ये भक्तों को अभी भी अनुभव होता है कि भाई हम इस क्लास में जाएं, कि हम प्रवचार के लिए जाएं, कि हम जप करें, कि हम भागवत पढ़ें, इन सभी से कृष्ण प्रसन्न होते हैं। प्रभुपाद जी अपनी टीका में बड़ा सुंदर कहते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम अपयंति थे। क्या है श्लोक पूरी तरह से? तेषां सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम अपयंति थे। कि जो लोग प्रीतिपूर्वक भजन कर रहे हैं भगवान का, तो भगवान उनको बुद्धि देते हैं कि इस समय तुम क्या करो। एक पता को बताना भूल गया, इसकी सनातन गोस्वामी जी की बड़ी सुंदर टीका है इस चैप्टर पे। वो ये कहते हैं कि कृष्ण को अभी तक डांट तो पड़ी थी माता यशोदा से, बहुत बार डांट पड़ी थी, लेकिन अभी तक वह उनके बंधन में नहीं आए थे। तो भक्तों से डांट खाने का सुख तो उन्हें प्राप्त किया था, लेकिन भक्तों के द्वारा बंधन का सुख, भक्तों के द्वारा नियंत्रण का सुख वह प्राप्त नहीं हुआ। तो उसको उस इच्छा के कारण ये लीला संपादित हुई, समझ रहे हैं? डांट तो बहुत बार खा लिए, लेकिन अब माता ने बांधा नहीं तब तक, तो बंधन का सुख भी वह प्राप्त करना चाहते। आप देखेंगे कि कृष्ण रोएंगे, ये सब कुछ करेंगे, उसमें भी उनको सुख प्राप्त हो रहा है। आज तो हम पूरा नहीं कर पाएंगे, सेकंड हाफ या थर्ड हाफ में जब भी आएगा, लेकिन यह कृष्ण की इच्छा थी। तो जो भगवान की लीला शक्ति है वह कृष्ण की इच्छा के अनुसार विभिन्न लीलाओं को संपादित करती है ब्रज में। तो हम खाली बोल रहे थे कि जो व्यक्ति भगवान से प्रेम करता है वही इस बात को समझ सकता है कि कोई प्रेमी भक्त एक विशिष्ट समय में क्या कार्य करता है और क्यों करता है। लेकिन हमने क्या बोला था,
वह
प्रेमी भक्त क्या कुछ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन वह सब कुछ कृष्ण के लिए होता है। एक भक्त ने प्रश्न किया कि भाई अर्जुन तीर चला रहे हैं तो कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं, क्या संभव है ऐसा? आप कह रहे हैं उनके लिए कर रहे हैं, तो कृष्ण का स्मरण नहीं कर रहे हैं। देखिए हम सब जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है कि भगवान के आदेश का पालन करते हैं तो भगवान का स्मरण होता है, लेकिन हम अपने स्तर से बोल रहे हैं। प्रभुपाद जी इस बात को बोलते हैं भगवद गीता के इसमें इंट्रोडक्शन में, कहते हैं देयर हैज टू बी अ सेंस ऑफ लव, प्रेम का भाव होना चाहिए तो अपने कर्म को करते हुए भी व्यक्ति स्मरण कर सकता है। बहुत आसान है, गांव में अपने माताओं को देखा होगा कि एक एक मटका, उसके ऊपर दूसरा मटका, उसके ऊपर तीसरा मटका, और साइड एक हाथ में बच्चा और एक हाथ में नीचे वाला बच्चा चल रहा है साथ, और मुंह भी चल रहा है, मुंह चल रहा है, बगल वाली माता जी से बातचीत हो रही है, और ध्यान जो है इस पे भी है कि घड़ा नहीं गिरता, मटका गिरता भी नहीं है और बच्चा भी नहीं गिरता है। तो इस प्रकार सब कुछ संभव है, ये प्रैक्टिस की बात नहीं है, ये प्रेम की बात। तो खैर इस प्रकार से माता यशोदा ने दूध क्यों बचाया, क्योंकि दूध की किल्लत थी, दूध मिल नहीं रहा था, ये सब ऑप्शंस पे टिक किया जाए। बाकी जो दूध था उसमें केमिकल मिला था नहीं, पद्मगंधा गाय का दूध था, और वह दूध भी किसके लिए था, कृष्ण के लिए था। तो वह कृष्ण की सेवा के लिए ही, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही दूध को बचाने के लिए गए थे। अब अगला फोटो आप देख सकते हैं, इसमें थोड़ा कृष्ण क्रोधित नहीं दिख रहे हैं, लेकिन मुझे एक क्लोजेस्ट फोटो मिला, इसमें एक हाथ दिख रहा है वो बलराम जी का है। तो ये लीला थोड़ी अलग है, लेकिन हम थोड़ा सा कटिंग करके आपके सामने प्रस्तुत किया है। वस्तुतः कृष्ण थोड़े क्रोध में है इस लीला में, और वह क्या करते हैं, पहले श्लोक बोलिए। संजात कोपः स्फुरितारुणाधरम्, आप लोग अंग्रेज हैं क्या, हिंदी में नहीं बोल पाते। संजात कोपः स्फुरितारुणाधरम्, संदश्य दद्भीर ददिमंथ भाजनम्, भित्वा मृषाश्रुर दृषदश्मनारहो, जगास हैयंगवमंतरंगतः, संजात कोप। कोप समझते हैं, कोप भवन याद आ रहा है, कौन सी लीला में कोप भवन सुने हो, यस कैकेयी का कोप भवन, यस वेरी नाइस। तो कोप भवन में क्या कर रही थी, खुश थी बड़ी, कोप मतलब होता है शायद, शायद का मतलब क्या था, गुस्सा ही होता है। संजात कोपा, सम्यक जाता, बड़े अच्छे से कृष्ण को क्रोध आया। फिर ध्यान दीजिएगा कि यह क्रोध तमोगुण से जनित नहीं है, यह भगवान की चिद शक्ति का विलास है, स्वरूप शक्ति का विलास है। स्फुरितारुणाधरम, अरुण मतलब होता है लाल, अधर मतलब उनके लाल जो होठ थे वह कांपने लग गए क्रोध से, अच्छा मुझको छोड़ के चली गई ऐसा कर। संदश्य दद्भीर ददिमंत माजनम, इसका अर्थ क्या है, वो कह रहे हैं कि जो बुरा जोड़ लीजिए, भित्वा मृषाश्रुर दृशत अश्मनो रहो, तो कह रहे हैं झूठे आंसू बहा रहे थे, झूठे आंसू बहाने से पहले उन्होंने वो जो मक्खन मतलब दही मथा जा रहा था उसको तोड़ दिया, और ऐसे तोड़ा कि ज्यादा आवाज नहीं हो। बड़े बुद्धिमान है हमारे भगवान, सबसे बुद्धिमान। एक छोटे से अश्मना का अर्थ होता है पत्थर से, उस पत्थर से उन्हें पट करके बोला ताकि ज्यादा उसमें से आवाज नहीं आए। और उसके बाद एक दूसरे कमरे में चले गए और जो वहां जाकर मक्खन खाने लगे। अब यहां पे मृषाश्रु बोला गया है। मृषाश्रु मतलब झूठे आंसू, हम लोग क्या बोलते हैं उसको, घड़ियाली आंसू बोलते हैं, मगरमच्छ के आंसू ऐसे बोलते हैं। प्राय आपने देखा होगा बच्चे ऐसे करते हैं और रोते भी हैं, वो कोई सच्ची रोना नहीं होता है, वो झूठा रोना होता है ऐसे करके। और कृष्ण इस प्रकार से रो रहे हैं, आप लोग कुछ आश्चर्य नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये वही कृष्ण है जो बोल रहे हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते, मुझे सब कुछ आ रहा है और जो कुछ भी हो रहा है मुझसे चल रहा है और सब कुछ होने के बाद मुझ में प्रवेश कर जाएगा। ये कृष्ण इस प्रकार से लीला कर रहे हैं। तो सामान्य व्यक्ति तो हम समझ ही नहीं सकते, फिर भी लीला का स्मरण कर सकते हैं। दृषद अश्मनहा मतलब उन्होंने पत्थर से उसे फोड़ दिया और फिर दूसरे रूम में, दूसरे घर में, दूसरे कमरे में जाकर वो खाने लगे। तो आप देख सकते हैं फोटो में कृष्ण एक मक्खन तोड़ दिए हैं, बंदरों को खिला रहे हैं, मक्खन का वो जो मटका है वो तोड़ दिए दही का, और वो उसको कृष्ण, सॉरी वहां तो दही का मटका तोड़ दिए, अब दूसरे इस रूम में आकर के कृष्ण क्या था, मक्खन खा रहे हैं और बंदरों को भी खिला रहे हैं। ठीक है, उत्तार्य गोपी ससृतं पयः पुनः, गलत हो गया, उत्तार्य गोपी सुश्रुतं पयः पुनः, प्रविश्य संदृश्य च दध्यमत्रकम्, भग्नं विलोक्य स्वसुतस्य कर्मत, जहास तं चापि न तत्र पश्यति। तब माता यशोदा ने क्या किया, दूध को नीचे उतार दिया और उसके बाद जहां पे वो दही मथ रही थी वहां पे आई और ने देखा कि दही का जो डब्बा, नहीं बोलना चाहिए डब्बा, सोचेंगे तो तुरंत आप सोचेंगे प्लास्टिक का डब्बा दही का मटका जो है वो तोड़ दिया। इसमें एक बड़ी लीला में बड़ी इंपॉर्टेंट मुख्य बात यह है कि माता यशोदा स्टेनलेस स्टील ये प्लास्टिक का डब्बा यूज नहीं कर रही थी, नहीं तो कृष्ण को तोड़ने में बहुत कठिनाई होती है कि नहीं। ये तो फिर उसमें आता कृष्ण ने ड्रिल लिया, ड्रिल से छेद किया टूटा तो मटका था, तो लीला अच्छे से हो गई। अब एल्यूमिनियम का होता या स्टील का होता तो तोड़ने में कठिनाई होती, फिर कृष्ण तोड़ते नहीं तो फिर गिरा देते उसको, ऐसे कुछ भी कर देते, लेकिन उतना रस नहीं आता ना गिरा देना और तोड़ने में, क्या रस था उसमें। एक पत्थर छोटा सा लिया और बहुत दिमाग लगा के छोटा सा छेद किया कि काम भी हो जाए और मालूम भी ना चले माता यशोदा को, बहुत रस है उसमें अगर विचार करें, बहुत दिमाग ला के कृष्ण तोड़े उसको, छोटा सा पुट करके आवाज आए। क्योंकि देखिए अगर आप तोड़ेंगे मटका तो मटका बहुत जोर से भी फूट सकता है, लेकिन ऐसे छोटा सा छेद किया कि वह फूट भी जाए और आवाज नहीं हो, माता नहीं तो माता यशोदा डांटेंगी। देखिए कृष्ण को डर ये लग रहा है कि अगर हम कुछ पता नहीं करेंगे तो पिटाई हो सकती है, वह ये नहीं सोच रहे कि मैं तो शिव और ब्रह्मा को भी नियंत्रण करने वाला नियंत्रक हूं, महान सर्वज्ञ हूं, माता यशोदा क्या करेंगी मेरा, इस तरह से नहीं सोच रहे। वो केवल ऐसे सोच रहे हैं कि मैं एक छोटा बच्चा हूं और मेरी माता मेरे को डांटेगी। आप सबको याद है ना अपना बचपन, अपनी बाल लीला याद है, नहीं याद है, जो गलती करते थे बहुत डर लगता था माता जी पिटाई करेंगी, है कि नहीं। ठीक है, तो माता यशोदा बड़ी प्रसन्न थी कि मेरा लड़का बड़ा बुद्धिमान है। ये फोटो देख रहे हैं आप, ये फोटो बहुत सुंदर है। आप कहेंगे इसमें माता यशोदा को उन्होंने ब्लू कलर की साड़ी क्यों पहनाई है, ठीक है ठीक है, अगली बार आप पेंटिंग बनाएगा तो चेंज कर दीजिएगा, बहुत सुंदर है। सबसे सुंदर फोटो कहा जाए, अगर आप थोड़ा ध्यान से देख पा रहे हैं कृष्ण कितने सुंदर दिख रहे हैं। और देख रहे हैं जिस वो है दूसरे कमरे में गए हैं, वो मक्खन चुरा रहे हैं और उलूखल के ऊपर खड़े हुए हैं। उलूखल जो होता है ये मसाला पीसने का होता है, आपने देखा होगा शायद गांव में, उसमें हम लोग क्या बोलते हैं उसको, खल बोलते हैं ना, हाँ यहाँ पे उलूखल। तो उस पर खड़े होकर के क्यों खड़े होना पड़ा, क्योंकि मटका में जो मक्खन होता था वो ऊपर बांध दिया जाता था, उसके ऊपर चढ़ करके कृष्ण चुरा रहे हैं और उनका प्यारे मुख को देखिए आप, बहुत सुंदर है। उनके चेहरे पे आपको डर दिखाई पड़ रहा है कि माता यशोदा आकर के डांटेंगी, बहुत सुंदर। कृष्ण भावना तो यही है कि हम किसी तरह से 24 घंटे भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं का श्रवण करें, दर्शन कर सकें। ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेना प्रविष्टुम च अपरंतपः, तत्व में इन लीलाओं को समझें और उसके बाद इन्हीं लीलाओं में प्रवेश कर जाएं। ठीक, तो ठीक आगे पढ़ते हैं। इस संबंध में एक टीका हम सुन रहे थे कि कृष्ण कह रहे थे अच्छा दूध बचाने चली हो, अभी मैं पुराना मक्खन खाऊंगा, बीमार पड़ूंगा, फिर तुमको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा, बहुत पैसा खर्च होगा, थोड़ा पैसा बचाने चाहती हो, ऐसे करके कृष्ण गुस्से में जाकर के दही वो मक्खन खाने लगे। और वो बंदरों क्यों बांट रहे थे, भी कुछ लोग टीका करते हैं, भक्तों ने किया है कि वो कह रहे हैं इतना खराब मक्खन है कि तो मक्खन बंदर भी नहीं खाते हैं। नहीं खैर, ये वो अलग दूसरी लीला में हुआ था, इस लीला में ऐसा नहीं है। जब वह चोरी करने जाते हैं मक्खन तब वो ऐसा इतना पहले खूब खुद खाएंगे फिर बंदरों खिलाएंगे, बंदर नहीं खाते तो कहते अरे ये मक्खन अच्छा है ही नहीं, देखो बंदर भी नहीं खा रहा है, तो ये एक अलग चीज है। ठीक है, ये इस प्रकार से कृष्ण कर रहे हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा है या बहुत कठिनाई हो रही समझने में? भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं इतनी मधुर हैं कि कोई नया भक्त भी बड़ी आसानी से समझ सकता है, और इसीलिए हमने फोटोएं भी बीच में रखी हुई हैं ताकि आप लोग लीला को तो कुछ धारण कर सकें। ठीक है, बैठ जाइए बैठ जाइए। ठीक है, आगे पढ़िए श्लोक क्रमांक 8। उलूखलांघ्रेर उपरी व्यवस्थितम् मर्काय कामं ददतं शचीस्थितम् हयंगवं चौर्य विशंकिते क्षणम् निरीक्ष पश्चात सुतम आगमच्छनैः। अब देख रहे हैं कि उलूखलांघ्रेर उपरी व्यवस्थितम्, उस उलूखल के ऊपर व्यवस्थित बैठे हुए थे मरकाय, मरकाय मतलब बंदरों को, कामम ददतम शिचि स्थितम। शिचि का अर्थ क्या लिखा है उसमें, शब्दार्थ में क्या लिखा है? शिचि स्थितम, अच्छा ऊपर रखा हुआ। और हयंगवम का अर्थ क्या है? हाँ, तो कह रहे हैं कि जितना भी मक्खन था और अन्य वस्तुएं जो दूध की थी वह दही त्याज्य था, वह बंदरों को खिला रहे थे जैसी उनकी इच्छा थी। कामम ददतम, मरकाया कामम ददतम, मरकाया मतलब बंदरों को, कामम ददतम मतलब जितनी इच्छा थी वो लुटा रहे थे। एक बार हमने सुना था संबंध में, भगवान सोच रहे थे कि भाई जब मैं भगवान राम के रूप में आया तो बंदरों ने बड़ी सेवा करी लेकिन हमने कुछ उनको प्रतिदान नहीं किया, खिलाया नहीं बढ़िया से, तो इस बार मौका मिल रहा है तो हम खूब बंदरों को खिलाएं, तो जम के बंदरों को उन्होंने कृष्ण लीला में खिलाया। तो यहां लिखा है कामम ददतम, जितनी इच्छा थी उतना उन्हें क्या खिलाया, चॉकलेट या आइसक्रीम, मक्खन, और मैं खाली सोच रहा हूँ आप लोग को याद है कि नहीं, लीला में है कि लीला के बाहर चले गए। किसको खिलाया, जिराफ को कि गैंडे को, बंदर को? ठीक है, तो बंदर को खिलाना ये भगवान की लीला का अनुसरण करना है। अद्भुत बात है कि अभी वृंदावन में बंदरों को नहीं खिलाते बेचारे, उनको उनको चश्मे जो है छीनने पड़ते हैं। लेकिन कह रहे हैं चौर्य विशंकित एक क्षणम, क्योंकि वह चोरी किए थे इसलिए विशंकित एक क्षणम, एक क्षणम मतलब आंखें बड़ी शंका से देख रहे थे, माता चौदह आ तो नहीं रही है, और जान रहे थे कि खबर पहुंच चुकी है, पुलिस आने वाली है, अब मेरे को डांट पड़ेगी। तो इसलिए कह रहे निरीक्ष पश्चात सुतम आगमत छनय, और जो माता यशोदा हैं वह अब उनके पीछे से जा रही हैं। आपने फोटो देखा है इसका, फोटो में माता यशोदा ढूंढते ढूंढते कृष्ण के पीछे से जा रही हैं। वस्तु था एक और बात भी है, अब इसमें फोटो में तो नहीं दिख रहा है, लेकिन जब कृष्ण दही का मटकी तोड़ दिए थे तो दही फैल गया, अब तो बहुत स्वीट है, और उस दही में छप 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 करके जा रहे हैं, तो उनके जो पांव का निशान है वह है बनता पहुंचाता कि जा किधर करे। देखिए वो भगवान जो सर्वज्ञ है वो कितनी मधुर लीला कर रहे हैं, अगर आप थोड़ा विचार करें तो, वही दही गिरा उसी में छप छप करके वो उसमें पांव पड़े, वो छप 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 सब है ना, छप छप दही पांव में लग गया, वो छप छप करते हुए जा रहे हैं दूसरे रूम में, और वह जो है इसीलिए तुम लोग गाते ना, इदम ते वपुर नाथ गोपाल बालम सदा मे मनस्या वीरस्तम के मन्ने। इस प्रकार की लीला का स्फुरण अगर किसी भक्त के हृदय में होने लग जाएगा तो उसे और क्या चाहिए, बहुत अद्भुत है, तो मोक्ष भी नहीं चाहिए, स्वाभाविक है। तो यही हरे कृष्णा करते करते, भगवान की भक्ति करते करते जब हमारा हृदय पूरी तरह एकदम मक्खन की तरह हो जाएगा, एकदम सॉफ्ट हो जाएगा, तो फिर भगवान की कृपा से वह सब लीलाएं हमारे हृदय में स्फुरित होंगे। देखिए इसमें लिखा भी बहुत सुंदर, माता यशोदा ने कृष्ण को किस प्रकार से पकड़ा, वो जो मक्खन वाले से, मक्खन से चुपके हुए इनके जो चरण थे उसी के छप 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 फुटप्रिंट्स का क्या होता है हिंदी में क्या बोलेंगे, पदचिन्ह को देख रही थी, और साथ साथ उनके जो वक्षस्थल ने, वक्ष नहीं कमर में करधनी बोलते हैं, उसमें जो झुंझुनी लगे रहे छिन 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 की आवाज थी वो करके आगे बढ़ रहे थे, जो अन्य जो कमरों से आ रही थी सुन करके माता यशोदा वहां चली गई, और वह समझ गई थी कि कृष्ण ने ही मक्खन चुराया है, और वह बहुत मुस्कुरा भी नहीं थी। और फिर उन्होंने निश्चय किया कि मैं जाकर उसको पकड़ूंगी, लेकिन उस समय तक कृष्ण वहां के दरवाजे से भाग के आंगन में चले गए थे, और फिर वह एक उसके बाद यही लीला है कि एक उलूखल के ऊपर बैठ करके, हाँ वो उखल पे क्यों बैठे थे ये भी अच्छा टीका है, वो कह रहे हैं कि उखल पे इसलिए बैठे क्योंकि कौओं से डर था उनको, अब जिनके नाम से उसके उच्चारण से भय भी भयभीत हो जाता है उनको कौओं से डर लगता है। इस संबंध में कृष्ण एक बार माता श्लोक कहते हैं, माता मैं ही नरसिंह रूप में आया था, मैं ही वामन देव के रूप में आया था, तो माता श्लोक कहते हैं अच्छा यहां तुम बिल्ली को देखते हो मेरी गोद में आ जाते हो और तुम कह रहे कि तुम नरसिंह देव थे, यहाँ जो भगवान के जो क्या कह सकते हैं दहलीज समझते हैं दहलीज चौखट वह लांग नहीं पाते और कह रहे हो तुम त्रिविक्रम थे जिसने पूरा जगत लांग दिया, तो हाँ ऐसा नहीं कहना चाहिए, तुम भक्त भगवान नहीं हो। तो क्यों उखल पे बैठे भगवान याद आ रहा है आपको, क्योंकि कौओं और अन्य जानवरों से उनको भय था। अब वो कह रहे हैं आगे उसको वर्णन कर रहे हैं कि जो मक्खन कृष्ण ने चुराया था उसको वो लेके आए बाहर, और वह अपनी माता से घबराए हुए थे कि माता आकर के उनको डांटेंगी, तो इस कारण से उधर उधर देख रहे थे कि माता आ तो नहीं रही, और वो भागने के चक्कर में थे कि भागेंगे। कभी कभी याद आया होगा अपने बाल लीला में आपके, जब बाल लीला में माता जी पिटाई कर रही थी या पिटाई करने की भावना में रहती थी तो हम लोग सोचते थे कहाँ भागे है कि नहीं। तो ये जो बच्चे जो चेष्टाएं करते हैं वही चेष्टाएं भगवान कृष्ण करने हैं, लेकिन जो कृष्ण करते हैं तो बहुत मधुर हो जाता है। और माता यशोदा भी चुपके से पीछे अब कृष्ण के जा रही हैं ताकि वह कृष्ण को पकड़ लें। ठीक है, इस फोटो को आप देख रहे हैं जो नवे श्लोक के पहले है, कृष्ण भाग रहे हैं, कितना सुंदर है, कृष्ण भाग रहे हैं और माता यशोदा उनके पीछे भाग रही हैं। आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो मेरी लीला में भी हुआ था, बाल लीला, मेरी माता, मैं भी भाग रहा था, मेरी माता जी भी मेरे पीछे भाग के मुझे पकड़ लेती थी। लेकिन भैया आप परमात्मा नहीं है, आप एक बद्ध आत्मा है और मैं भी एक बद्ध आत्मा हूं, हम पहले से ही बद्ध हैं। लेकिन भगवान को योगियों का संग्रहित मन जो पूरी तरह से एकदम कैसे कहते हैं कंट्रोल हो गया, वह भी पकड़ नहीं पाता। जो योगी अपने एकदम संयमित मन से भगवान के नखचंद्र की धारणा भी नहीं कर सकते हैं, उनको माता यशोदा पकड़ लेते हैं अपना बच्चा मानकर। कृष्ण के चेहरे को देखिए, कृष्ण कितने भयभीत हैं कि पकड़ा जाऊंगा, उसके बाद प्रेम नहीं होगा तो चार चांटे भी लगेंगे, बहुत डांट पड़ेगी, और भाग रहे हैं। और सही में जिस किसी भक्त के हृदय में कभी ऐसे स्फुरित हो गया फिर वे जगत के लायक नहीं रहेगा, और यही जीवन का लक्ष्य है कि मैं जगत के लिए नालायक हो जाए। ऐसे नालायक हैं हम लोग, लेकिन सही में नालायक हो जाए ये कब होगा पता नहीं, लेकिन कब कभी भी हो गया तो बस वो हमारा आखिरी दिन होगा इस जगत के लिए, ऊपर कुछ सोच नहीं सकते उसके अलावा। ये सब बातें पता नहीं बोलनी चाहिए कि नहीं, लेकिन आपको कितना इंस्पिरेशन मिल रहा है इससे हमें पता नहीं है, लेकिन जीवन का लक्ष्य तो यही है कि किस प्रकार से ऐसे कृष्ण की लीलाएं हमारे हृदय में स्फुरित होते रहे। ठीक है, पढ़ते हैं आगे, हम अभी रुक जाएं या फिर अगली बारे में शुरू करें, या थोड़ा पढ़ सकते हैं क्या, थोड़ा पढ़ सकते हैं। मैं श्लोक से सबके चल रहा हूं, जितना टीका में है उतने बताने का प्रयास कर रहा हूं। ताम आतयष्टिम प्रसमिक्ष सत्वर ततो वरुह्याप ससार भीतव गोप्यन्वधावन्नयमाप योगिनाम शमं प्रवेष्टुं तपसेरितं मनः भगवान कृष्ण ने जब अपनी माता को देखा, और वो माता जिनके हाथ में छड़ी है आतयष्टिम, तो बड़े घबराहट हुई कि आज तो बहुत पिटाई होगी, डंडी से भी पिटाई होगी, माता का मूड बिल्कुल ठीक नहीं है। वैसे माता कभी मारने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी कृष्ण भयभीत हो गए कि आज तो लग रहा है जम के पिटाई होगी। तो वो कह रहे हैं कि नयमाप योगी नाम, जो योगी हैं वह परमात्मा का ध्यान करने का प्रयास करते हैं, लेकिन ताकि भगवान के शरीर से निकलने वाले दिव्य तेज में वह समा जाएं, और बहुत तपस्या करने के बाद भी वह उस तेज को प्राप्त नहीं कर पाते। वह परमात्मा जो भगवान के अंश हैं, वह भी उनकी प्राप्ति भी कई कई सालों तक युगों तक तपस्या करने के बाद भी योगीजन नहीं कर पाते। लेकिन उन्हीं भगवान को माता यशोदा अपना बच्चा मान करके उनके पीछे भाग रही हैं और उनको पकड़ने का प्रयास कर रही हैं। इसी के विपरीत एक और लीला हुई, एक कालनवन यवन नाम का एक असुर था जो भगवान के पीछे भाग रहा था और भगवान को पकड़ नहीं पा रहा था, भगवान बस खाली एक फुट की दूरी पर रहते थे उससे। वहां पर लिखा गया क्योंकि वह पापी था इसलिए भगवान उसके को स्पर्श नहीं कर सकता, तो माता यशोदा प्रेम के कारण सोच रही हैं कि यह मेरा बच्चा है तो मुझे उसे पकड़ना है। अब एक प्रश्न उठेगा कि माता यशोदा ने डंडी क्यों पकड़ी? क्या उन्हें कृष्ण को पिटाई करनी थी? ना, केवल कृष्ण को डांटना था, डराने के लिए। ये लड़का बहुत शैतान हो गया है, इसको डराने के लिए इस प्रकार से डंडी पकड़ी। माता यशोदा कभी मारने के मूड में नहीं थी। हमारी माता जी लोग थोड़ा झाड़ू का प्रयोग किए हैं हमारे ऊपर, लेकिन इसलिए अब ये नहीं कह सकते कि हमारी लीला चल रही थी, वो बाल लीला। लेकिन माता यशोदा केवल डांट रही थी। जैसे कृष्ण भी कभी गायों को मारते नहीं थे, भले डंडा रखते थे, लकुटी इत्यादि कभी मारते नहीं थे, केवल वाणी के द्वारा ही हुए। वाणी क्या, वो तो वहां की सब गाय भी उनको बहुत प्रेम करती हैं। यहाँ फोटो है कि नहीं? यहाँ नहीं है, मेरे ऑफिस में बहुत सुंदर फोटो है। सारी गायें, बछड़े, ग्वाल बाल सब कृष्ण को देख रहे। उस दुनिया से हम कितना दूर है। इसमें शब्द है भीतवत, क्योंकि भीतवत मतलब जैसे वह घबराए हुए जैसे। क्यों घबराए हुए जैसे? क्योंकि वह जानते हैं कि माता यशोदा से मुझसे प्रेम करती हैं, इसलिए उनको घबराहट थी नहीं। और दूसरा इसका अर्थ यह है कि कृष्ण उठे और बड़े घबराए हुए भावना में भागे, जैसे घबरा के कोई भागता है, भीतवत उस प्रकार से कृष्ण भागे। अब इसके ऊपर एक और श्लोक यहां पे आचार्य जी कोट किए हैं, गोप्यादे त्वयि कृतागसिदाम तावन् याते दशाश्रु कलिलंजन संभ्रमाक्षम वक्त्रम निनीय भय भावनया स्थितस्या सामाम विमोहयति भीर अपि यद विभेति। उस समय कुंती माता जो कृष्ण की बुआ हैं, मामी हैं, चाची हैं या ताई हैं? बुआ, वेरी गुड। तो कुंती माता जो कृष्ण की बुआ जी हैं, उस दीपावली वाले दिन वहीं उपस्थित थी जिस दिन यह लीला हुई थी। तो प्रथम स्कंद में वह इस बात को तब बोल रही हैं जब कृष्ण युवावस्था में हैं और हस्तिनापुर से वापस जा रहे हैं, और वह स्मरण कर रही। देखिए, कम से कम मान के चलिए कि यह लीला हो रही है, ये विचारणीय बात है। ये लीला कब हो रही है? कब हो रही है? महाभारत के युद्ध के बाद। और लीला कब हुई थी? जब कृष्ण मुख्य कितने साल के होंगे, 6 महीने या साल भर, जो भी समय रहा हो, यानी कि 122 साल के बाद भी उनको ये बात याद है। यह है कृष्ण की लीला का प्रभाव। मैंने कभी सोचा नहीं इस तरह से। ये लीला जो भगवान की है वो बाल लीला है, और जब भगवान कृष्ण हस्तिनापुर से लौट रहे हैं द्वारका में, तब वह कब की बात है? जब पूरा महाभारत युद्ध हो चुका, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को छोड़ा, भगवान ने उसको निरस्त किया, उसके बाद कुंती महारानी बोल रही। तो ये भगवान की लीलाओं की विशेषता है कि कोई उसका अनुभव इस प्रकार से कर ले तो जीवन भर नहीं भूल सकता। आज वो कह रही, आज भी मैं विमोहित हो रही हूं कि आप जिनसे भय भी भयभीत होता है, आपकी शरण लेने वाले अभय को प्राप्त हो जाते हैं, उन्हें किसी बात का भय नहीं होता है, और आप माता यशोदा से कृतागसी, आपने एक अपराध किया, ये मटका फोड़ दिया, इस वजह से भयभीत हो रहे थे, मैं समझ नहीं पा रही, मैं मोहित हो रही हूं। हम लोग जब IIT में थे तो हमसे प्रश्न किया जा रहा था, तो भगवान के वाकई भयभीत हो रहे हैं या भयभीत होने का नाटक कर रहे हैं या क्या और कोई ऑप्शन है? तो हम लोग तो कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे कि प्रश्न हो क्यों रहा है। हम लोग सोचते प्रसादम का समय हो गया है। ये प्रश्न क्यों किया जा रहा है हमसे? तो हम लोग कुछ अपना साइंस की बुद्धि लगा रहे थे ना, वो नाटक कर रहे हैं, लोगों को सिखाने के लिए कर रहे हैं क्या क्या। और इतना कृष्ण भयभीत हो रहे हैं, इतना रो रहे हैं कि जो उनके यहाँ पे मस्कारा होता है, जो काजल होता है, वो बह जा रहा है। और प्राय ऐसे में माता, और दूसरी बात, हाथ माता ने पकड़ रखा है, तो एक ही हाथ है, इसी से ऐसे करके रो रहे हैं, एक ही हाथ से पहुंच रहे हैं, तो सब जो आंसू निकल रहा है, वह भी जो काजल उसको धोए जा रहा है, तो वह उस दृश्य का स्मरण कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको ऐसा कर गए वो विमोहित। हम लोग कुछ होता ही नहीं है, हाँ रो रहे हैं कृष्ण, रोते रहे, हमें क्या है, प्रसाद टाइम क्या है, आज का मेन्यू क्या है, बस यही सोचते हैं हम लोग। सोचते ही नहीं कि कृष्ण की लीला के में कैसा क्यों हो रहा है, लेकिन मानव जीवन इसी के लिए है, कृष्ण की लीलाओं का मनन करें, चिंतन करें। तो बात ये हो रही है कि वो भगवान जो योगियों के द्वारा तपस्या करने के बाद भी प्राप्त नहीं है, वह भगवान को कृष्ण भगवान को अपना बेटा मान करके माता यशोदा न सिर्फ पकड़ने का प्रयास कर रही है बल्कि पकड़ भी लेती हैं, और इसीलिए पकड़ पा रही हैं क्योंकि उनका प्रेम है, अन्यथा भगवान को कोई नहीं पकड़ सकता। ठीक है, ठीक है, आगे हम एक श्लोक पढ़ करके रुक जाएंगे, क्योंकि उस समय हम फिर कृष्ण को बंधन में छोड़ देंगे, माता यशोदा कृष्ण को पकड़ लेंगी, उसके बाद की क्या लीला है वो 10-11 श्लोक हो जाएंगे, उसको हम अगली बार चर्चा करेंगे। एक हफ्ते तक कृष्ण को हम माता यशोदा के हाथ में ही बांध करके छोड़ दे रहे हैं, अभी रस्सी से नहीं बांधते, अभी थोड़ा रोने देते हैं कृष्ण को। अन्वंचमाना जननी बृहच्चलज श्रोणी भराक्रांत गति ही सुमध्यमा जवेन विसंसृत केश बंधना चिता प्रसूनानुगति ही परामृश तो कह रहे हैं कि माता यशोदा जब कृष्ण के पीछे भाग रही थी तो उनका शरीर बड़ा भारी भरकम था, तो उस कारण से बहुत तेज नहीं भाग पा रही थी, फिर भी पूरी तेजी से दौड़ी और उनके बाल खुल गए और उनके जो मालती के पुष्प थे जो उनके माथे पे सर पे थे वह केशों में थे वह नीचे गिरने लगे, फिर भी उन्हें कृष्ण को पकड़ लिया। तो कहने का अर्थ ये है, अच्छा इंटरेस्टिंग है, वह योगी जन जो लोग सुखाते नहीं है, व्रत करते करते शरीर को सुखा देते हैं, मन को नियंत्रित कर लेते हैं पूरी तरह से, वह भी भगवान को नहीं पकड़ पाते, लेकिन माता यशोदा जो एक समान बाहरी रूप से देखा जाए तो गृहिणी है, वह भी अपने प्रेम के कारण कृष्ण को पकड़ लेती है। अंतर समझ रहे हैं, परमात्मा जो भगवान कृष्ण के विस्तार हैं, अंश हैं, उनको योगी जन खूब तपस्या करने के बाद भी नहीं प्राप्त कर पाते हैं, लेकिन वही भगवान कृष्ण जो सारे विष्णु तत्वों के स्रोत हैं, उनको माता यशोदा अपने प्रेम के कारण एक गृहिणी है उनको पकड़ लेती है और कृष्ण कहीं नहीं जा पाते। इसमें बड़ी सुंदर टीका है, वो कह रहे हैं चुतः पसुना अनुगतई, बहुत सुंदर थी, तो मैंने अभी तक देखा भी नहीं था। वो कह रहे हैं कि माता यशोदा जब कृष्ण के पीछे भाग रही हैं तो जो फूल हैं वो ऐसे गिर रहे हैं जैसे माता यशोदा के पीछे चल रहे हों, वो आगे दौड़ते जा रही हैं और फूल गिरते जा रहे हैं पीछे, समझ पा रहे हैं, धारणा कर पा रहे हैं, और फिर कृष्ण आकर के माता यशोदा दौड़ करके कृष्ण को पकड़ लेती हैं। अब उन्होंने कृष्ण को पकड़ लिया है और कृष्ण भयभीत हैं, तो यहां पे हम कथा को विराम देंगे, कृष्ण को भयभीत छोड़ देते हैं और कृष्ण के भय का निवारण हम लोग अगले हफ्ते करेंगे, स्टॉप कर सकते हैं। कोई प्रश्न है किसी का?
यस प्रभु।